स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 20 अगस्त और दिन मंगलवार, कश्मीर के हालात को लेकर मोदी और ट्रंप की टेलीफोन पर बातचीत। उधर लद्दाख में लोगों को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की चिंता।
जो आर्टिकल 370 है या 35 है उसको आप एब्रोगेट किया गया है, तो सेफ गार्ड का थोड़ा लोगों में कंसर्न है। जैसे कि यहाँ के लैंड का सेफ गार्ड हुआ, यहाँ के बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए सेफ गार्ड हुआ, बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत आएंगे, ऐसा लोगों का एप्रीहेंशन है।
नहीं रहे संगीत के जादूगर खय्याम। और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आदर्श राठौर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके कश्मीर को लेकर पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए कहा है। भारत प्रशासित कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के बाद भारत के इस कदम के बाद से ही भारत और उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा कि कुछ नेता भारत के खिलाफ हिंसक भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, जो क्षेत्र की शांति के लिए ठीक नहीं है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकार मोहम्मद जहूर हाशमी खय्याम का सोमवार साढ़े नौ बजे 93 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले कुछ समय से सांस लेने में दिक्कत के कारण उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा है। पुतिन से होने वाली वार्ता से पहले मैक्रों ने कहा कि रूस को लोगों को प्रदर्शन करने और चुनाव में हिस्सा लेने की आज़ादी देनी चाहिए। मॉस्को में अगले महीने होने जा रहे स्थानीय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों को हिस्सा लेने से रोके जाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर मैक्रों ने यह बात कही, मगर पुतिन ने कहा कि वो नहीं चाहते कि मॉस्को में फ्रांस के येलो वेस्ट आंदोलन जैसे हालात बन जाएं। मैं आपका मेहमान हूं, इस विषय पर बात करते हुए असहज हूं, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो बता दें कि तथाकथित येलो जैकेट विरोध प्रदर्शनों के दौरान क्या हुआ हम जानते हैं। मेरे हिसाब से 11 लोगों की मौत हुई, 2500 जख्मी हुए। हम रूस की राजधानी में ऐसी स्थिति नहीं चाहते। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक और ट्विटर का कहना है कि उन्होंने चीन सरकार समर्थित ऐसे अभियान से पर्दा उठाया है जो हांगकांग में कलह पैदा करने के लिए गलत जानकारियां फैला रहे थे। कंपनियों का कहना है कि उन्होंने चीन से चलने वाले इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। ये अकाउंट हांगकांग में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर गलत जानकारियां दे रहे थे। युगांडा के पश्चिमी हिस्से में पेट्रोल ले जा रहे एक टैंकर के हादसे के शिकार होने से इसमें एक धमाका हो गया और इसकी चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि पुलिस ने मारे गए लोगों के परिजनों से सैंपल मांगे हैं ताकि डीएनए के आधार पर शवों की पहचान की जा सके। हादसे के बारे में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मुहमुजा स्वाबू ने बताया, टैंकर ने एकाएक नियंत्रण खोया और ये चार गाड़ियों से टकरा गया। इनमें से दो तुरंत पलट गईं। इसी बीच चिंगारी पैदा हुई और ये धमाका हो गया। ये थे युगांडा के एक पुलिस अधिकारी के शब्द। ऐसी ही एक घटना 8 दिन पहले युगांडा के पड़ोसी देश तंजानिया में हुई थी, जहां पर हादसे के बाद लीक हो रहे पेट्रोल को इकट्ठा कर रहे 85 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने बताया है कि उसने हाल ही में एक नई मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के साथ की गई INF संधि से बाहर आने के बाद अमेरिका का ये पहला ऐसा कदम है। INF संधि पर दोनों देशों ने 3 दशक पहले हस्ताक्षर किए थे ताकि यूरोप को परमाणु हथियार मुक्त किया जा सके। एल सल्वाडोर में 20 साल की उस महिला को रिहा कर दिया गया है जिसके शिशु को शौचालय में मृत पाया गया था। एल सल्वाडोर में गर्भपात से जुड़े कानून काफी सख्त हैं। इवलिन नाम की इस महिला का कहना था कि उनके साथ बलात्कार हुआ और उन्हें नहीं मालूम था कि वो गर्भवती हैं, लेकिन उन्हें हत्या का दोषी पाते हुए 30 साल की सजा सुनाई गई थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने रवांडा के साथ लगती सीमा पर कारोबार करने के लिए आने जाने वाले कारोबारियों को इबोला बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करने का प्रस्ताव रखा है। यहां के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इससे बीमारी को फैलने से रोक पाने में कामयाबी मिलेगी। उधर रवांडा ने भी इबोला से निपटने के लिए लाखों की संख्या में वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। میں ہوں اقبال احمد۔ آج ہے اگست کی 20 تاریخ اور دن ہے منگلوار۔ اس وقت بھارت میں بج رہے ہیں 6:34 اور 44 سیکنڈ۔ آپ اس کارکرم کو ریڈیو کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ کارکرم کی شروعات بھارت پرشاسیت کشمیر سے۔ جموں کشمیر سے انوچھید 370 ہٹائے جانے کے بعد پہلی بار بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی کی امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ بات چیت میں پردھان منتری مودی نے پاکستان اور عمران خان کا نام لیے بنا ان پر تناؤ پھیلانے کا آروپ لگایا۔ مودی نے شیتریہ استھتی پر کہا کہ کچھ نیتا بھارت کے خلاف ہنسک بھڑکاؤ بیان بازی کر رہے ہیں جو علاقے کی شانتی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ مودی اور ٹرمپ کے بیچ یہ بات چیت تب ہوئی ہے جب حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے بتایا تھا کہ راشٹرپتی ٹرمپ اور پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے بیچ بات چیت ہوئی اور اس میں ٹرمپ نے انہیں اسلام آباد اور نئی دلی کے بیچ بات چیت کرنے کی صلاح دی ہے۔ پردھان منتری کاریالے نے ٹویٹ کر بتایا ہے کہ سوموار کو مودی کی امریکی راشٹرپتی کے ساتھ ٹیلی فون پر لگ بھگ 30 منٹ کی بات چیت ہوئی جس میں دوی پکشی اور شیتریہ معاملوں پر بات چیت ہوئی۔ اور اسی سے جڑی اب ایک دوسری خبر اور چلتے ہیں لداخ۔ لداخ کو کیندر شاست پردیش کا درجہ ملنے کا وہاں بودھ بہل علاقوں کے سانسکرتک سنگٹھنوں اور راجنیتک جماعت نے سواگت کیا ہے، لیکن اب اس فیصلے کو 15 دن گزر جانے کے بعد وہاں لوگ کیندر شاست پردیش کے سوروپ پر وچار کر رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انوچھید 370 کے ہٹنے کے بعد ان کی زمینوں اور ان کے کاروبار کے سنرکشن کے لیے وشیش پراودھان بنائے جائیں۔ لداخ کے بی جے پی سانسد جمیانگ شیرنگ نمگیال نے بھی اس سمبندھ میں کیندریہ منتری ارجن منڈا کو ایک خط لکھا ہے۔ لیہ سے بی بی سی سنواداتا کلدیپ مشر کی یہ خاص رپورٹ۔
کیندر شاست پردیش کی دشکوں پرانی مانگ پوری ہونے کے بعد لداخ نے بیتے 15 اگست کو وشیش سوتنترتا دیوس منایا۔ لیہ کے پرمکھ بازار میں ایک بینر لگا ہے جس پر لکھا ہے لداخ کا کیندر شاست پردیش اپنا پہلا سوتنترتا دیوس منا رہا ہے۔ لداخ کے سانسد جمیانگ شیرنگ نمگیال کو سوتنترتا دیوس پر لوک نرت کرتے ہوئے بھی دیش نے دیکھا، لیکن جشن کا ماحول اب کچھ تھم گیا ہے اور ان ادھیکاروں کو بچانے کی کوشش شروع ہوئی ہے جو انوچھید 370 کے جانے سے چھن گئے ہیں۔ انوچھید 370 کے پراودھان ہٹائے جانے کے بعد یہاں کی زمینیں بھی باہری لوگوں کے خریدنے کے لیے کھل جائیں گی۔ استھانیہ لوگوں میں یہ آشنکا بھی ہے کہ شہری اودیوگک وکاس کی آندھی کہیں ان کے کاروبار، سنسکرتی، پریاورن اور پہچان کے لیے استتو کا سنکٹ نہ پیدا کر دے۔ ٹیکسی چلانے والے 24 سال کے استانزن چوزب کہتے ہیں،
مجھے تو پتہ نہیں یہ لداخ کی لوگ کیوں خوشی منا رہا ہے، تو میرے کو لگ رہا ہے کہ آنے والا فیوچر میں جو لداخ کی کلچر ہے نا وہ پورا طرح ڈسٹروائے ہو جائے گا، پورا چلے جائے گا، کیونکہ ابھی جتنا بھی ٹورسٹ آ رہا ہے وہ لداخ میں کلچر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، لداخ کی کلچر کیسا ہوتا ہے، لداخ کی کیسا ہوتا ہے۔ تو ابھی تو یوٹی مل گیا اور وہ 370 وہ بھی ہٹا دیا، تو کوئی بھی لداخ میں آ کے سیٹل ہو سکتا ہے۔ ابھی انوائرمنٹ کو لے کے تو بہت بگڑ جائے گا، جیسے انڈسٹری ایسا بہت بڑھ سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے گاربیج آئے گا اور بہت سارا لوگ یہاں پر سیٹل ہو جائے گا۔
انہی آشنکاؤں کے چلتے نرت کر کے آزادی دیوس منانے والے ستھانیہ بھاجپا سانسد جمیانگ شیرنگ نمگیال نے کیندریہ آدیواسی کلیان منتری ارجن منڈا کو ایک چٹھی لکھ کر لداخ کو جنجاتی کھیتر گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے تاکہ یہاں کی زمین اور پہچان سرکشت رہے۔ انہوں نے اس چٹھی میں لکھا ہے،
لداخ ایک جنجاتی بہل کھیتر ہے اور یہاں کی 98% آبادی جنجاتی ہے اور زمین آدھارت ارتھ ویوستھا سے جڑی ہے۔ ان کے پاس رہن سہن کے نیونتم سادھن ہے، یہاں مشکل جلوایو ہے اور روزگار کے کم سادھن ہیں، ساتھ ہی یہاں کا پریاورن کافی نازک ہے اور گلوبل وارمنگ کے چلتے یہاں پراکرتک آپدائیں بھی آ سکتی ہیں۔ اس لیے لداخ کو سمویدھان کے انوچھید 244 کے تحت جنجاتیہ علاقہ گھوشت کرنے اور لداخ کو 6ویں انوسوچی میں شامل کرنے سے یہاں کے لوگوں کے وکاس اور سمردھی کا راستہ صاف ہو سکے گا۔
یعنی اب بھاجپا سانسد چاہتے ہیں کہ انوچھید 370 کے بعد اس کا ایک ویکلپک پراودھان لایا جائے، جیسا پورووتر راجیوں میں ہے، جیسا ہماچل پردیش اور کچھ انیہ پردیشوں میں بھی ہے۔ कहा जा रहा है कि इसके पीछे यहाँ की प्रभावशाली धार्मिक संस्था लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और कारोबारी एसोसिएशन का भी दबाव है। पीटी कुंजांग लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही वो यहाँ के तमाम होटल टैक्सी और टूरिस्ट एसोसिएशन के साझा संगठन ट्रैवल ट्रेड अलायंस के प्रमुख भी हैं। वो यूटी के फैसले का स्वागत करते हैं पर लगे हाथ यहाँ के कारोबार और सांस्कृतिक पहचान को बचाए जाने की ज़रूरत भी बताते हैं।
70 साल पहले जो हमारा डिमांड जो था, जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ही प्लेटफॉर्म से इनिशिएटिव से शुरू हुआ था 1949 में, वो आज 70 साल के बाद हमारा सपना साकार हुआ। जो आर्टिकल 370 है या 35 है उसको अब एब्रोगेट किया गया है, तो सेफ गार्ड का थोड़ा लोगों में कंसर्न है, इश्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ के लैंड का सेफ गार्ड हुआ, यहाँ के बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए सेफ गार्ड हुआ, बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत आएंगे ऐसा लोगों का एप्रीहेंशन है, जॉब्स का यहाँ पे लोकल जॉब्स का क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे एप्रीहेंशंस और थोड़े लोगों में कन्फ्यूजन है।
लद्दाख के ही कारगिल में केंद्र शासित प्रदेश के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और अब लेह में इस फैसले के स्वागत के स्वर भी अपनी जगह हैं, लेकिन अब जोर अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने पर आ गया है। हालांकि ये स्वर चिंताओं के ही हैं, इन्हें नाराजगी के स्वर नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए बिना केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता तो बेहतर होता, पर कई लोग ये भी कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए बिना बरसों पुरानी ये मांग पूरी होनी संभव ही नहीं थी। कुलदीप मिश्र, BBC लेह।
और अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस पर BBC की संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से बात की और पूछा कि आखिर इसकी क्या वजह रही।
प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें दूसरी लाइन यही है कि रीजनल जो हालात हैं उनको देखते हुए ये फैसला किया गया है। तो भारत ने जो कश्मीर के बारे में ऐलान किया है और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में यही समझा जा रहा है कि अगले साल 2 साल जो हैं वो कश्मीर में काफ़ी अनस्टेबिलिटी हो सकती है और उसकी वजह से जो LOC है उस पर भी काफ़ी तनाव हो सकता है, तो इन हालात में किसी नए कमांडर को लेके आना शायद अच्छा नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा कश्मीर में भी सर्व कर चुके हैं, उनका वहाँ का भी एक्सपीरियंस है और कंटिन्यूटी को बेसिकली इमरान खान ने तरजीह दी है कि जो पॉलिसियाँ बाजवा साहब पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान में सिक्योरिटी के उसमें लेके आए हैं, वायलेंस कम हुआ है, उसको जारी रखने और रीजन में जो हालात बेहतरी की वो कोशिशें कर रहे हैं, शायद उसके लिए उन्होंने उसको एक्सटेंशन दी है
जी। और भारत के लिहाज से सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का अब तक का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है?
देखें, काफी पाकिस्तान पर दबाव रहा है हालिया वर्षों में और उसको देखते हुए ये देखा गया है कि जो इंडिया एंटी इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान में, जैसे कि लश्कर ए तैयबा और ये जो हाफिज सईद साहब हैं उनकी तंजीमें, तो हाफिज सईद साहब को भी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। फिर जो पाकिस्तानी कश्मीर है वहाँ पर भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दफ्तर बंद कर दिए गए, तो इसकी वजह भारत का दबाव तो था ही, लेकिन जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म की इंटरनेशनल वॉच डॉग है और देखती है कि देश किस तरह से उसको काउंटर करते हैं, उसका काफ़ी दबाव था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को ये इकदाम उठाने पड़े। तो काफ़ी बैक रोल किया है उन्होंने जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्पेस थी पाकिस्तान में, तो उस एतबार से तो मेरे ख्याल में काफ़ी भारत के लिए अच्छे साबित हुए कि जो भारत मांग कर रहा था वो उसके हिसाब से ही उन्होंने यहाँ पर कोई अपने जो पिछले 3 साल हैं उनमें काम उस पर किया, और उसको वो बाजवा डॉक्ट्रिन भी कहते हैं जिसमें वो देश के अंदर हालात को बेहतर करने और मिलिटेंसी को ख़त्म करने की जो बातें हैं उस पर वो काफ़ी तवज्जो देते रहे हैं
जी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान की राजनीति और सैन्य नेतृत्व एक दिशा में देश के भविष्य के लिए सोच रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये जो 1 साल कल ही इमरान खान की जो सरकार है उसने अपना पूरा किया है पहला वर्ष, और इस एक साल में जो मिलिट्री है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक पेज पर ही दिखाई दिए हैं, और सरकार भी यही कहती है कि जो इश्यूज हैं सिक्योरिटी रिलेटेड और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड उसमें दोनों की पॉलिसी एक ही है। तो अभी तक तो कोई इख्तलाफ नजर नहीं आया, दोनों काफी मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इमरान खान पर ये आरोप भी लगाते हैं कि वो मिलिट्री को ज्यादा स्पेस दे रहे हैं जो के देनी चाहिए। बट देखना ये भी है कि अभी एक साल हुआ है इमरान खान के, अभी चार साल बाकी हैं, और हर सरकार में पाकिस्तान में इब्तिदा में तो हनीमून पीरियड होता है, अच्छे हालात रहते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये हालात अगले तीन साल भी इसी तरह बरकरार रहते हैं या नहीं, ये काफ़ी अहम होगा।
पाकिस्तान से ये थे वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है और आदर्श राठौर तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आदर्श, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी इकबाल, जो दिल्ली से छपे अखबार हैं लगभग सभी में जम्मू कश्मीर को लेकर खबर है कि जिस तरह से कल घाटी में कुछ स्कूलों को खोला जाना था, 190 से अधिक स्कूल तो खुले लेकिन वहां पर बच्चे नहीं आए। द स्टेट्समैन लिखता है टीचर्स टर्न अप स्टूडेंट्स डोंट, यानी कि जो अध्यापक हैं वो तो स्कूल पहुंच गए लेकिन माता पिता ने बच्चों को नहीं भेजा, ये प्राइमरी स्कूलों की बात हो रही है। इसके साथ ही जो खबर लगभग सभी अखबारों में देख पा रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो कल बातचीत हुई, और ये सलाह दी है ट्रंप ने कि ये जो अभी तनाव बना हुआ है क्षेत्र में उसको आप कम करने की कोशिश करें।
आदर्श, ये जो भारत के प्रधानमंत्री जो कार्यालय पीएमओ से जो बयान जारी हुआ उसमें ये बहुत साफ तौर पर नहीं कहा गया कि फोन किसने किया
जी,
लेकिन इस बारे में कोई जानकारी है?
हाँ, इसको लेके उन्होंने ये जानकारी नहीं दी, लेकिन जो भारत की ओर से सिर्फ ये कहा गया कि जब बातचीत हुई तो ट्रंप ने
ये कहा,
ट्रंप से क्या कहा गया, और भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि क्षेत्र में, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ माना जा रहा है कि कुछ नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं भारत के खिलाफ जिससे कि जो शांति की अगर कोशिश करनी भी है तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है एक मामले पर कि स्त्री और पुरुष की विवाह की कानूनी उम्र क्यों ना एक कर दी जाए, एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जनसत्ता में यह खबर।
अभी भारत में 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए, और बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि इसको क्यों ना एक बराबर कर दिया जाए
जी। वही हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है कि पहलू खान मामले को लेकर कि जो दो वीडियो थे उस मामले में शूट किए हुए उनको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे कि जांच में कुछ गड़बड़ी है, उनको अदालत ने भी कंसीडर नहीं किया था। तो ये गया था कि जो राजस्थान की स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसने ये कह दिया था कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये प्रामाणिक है, ये तो एक बड़ी बात है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को एक कथित विमानन घोटाले में समन भेजा है। हिंदुस्तान अखबार का कहना है कि ये 2007 में एयर इंडिया के लिए 111 विमानों की खरीद के सिलसिले में पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और नुकसान की आशंका जताई जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 40 साल की सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और ये जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही हरियाणा में जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण ये खतरा पैदा हुआ है। और बारिश की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगभग 2000 लोग फंसे हुए हैं, ये बाकी दुनिया से कटे हुए हैं, और इन्होंने शरण ली है, जो भी वहाँ के होटल हैं गेस्ट हाउस हैं वहाँ पर अधिकतर यहाँ पे ये जो है पर्यटक हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संकेत दिए हैं कि नए संसद भवन को बनाने पर विचार किया जा रहा है, और इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो अपना अभी का संसद भवन है उसको कोई नया रूप दिया जाए। उनका ये कहना था इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक कि 2022 में जब भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तब संसद भवन का स्वरूप भी बदलना चाहिए। इसके साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कल आरक्षण को लेकर एक बयान दिया
था। ये बात कही, और पहले भी इस तरह के बयान उनकी तरफ से आते रहे हैं। आपको याद होगा कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2015 में, तो मोहन भागवत का एक बयान बहुत सुर्खियों में रहा था, और उस वक्त लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ साझा में थी और दोनों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था जिसका बीजेपी को बहुत चुनावी नुकसान भी हुआ। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आदर्श आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा से सफलतापूर्वक निकलने के बाद अब चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 2 मंगलवार यानी आज चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 2 से जुड़ी पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन मंगलवार का दिन चंद्रयान 2 के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने विज्ञान से जुड़े मामलों के जानकार पल्लव बागला से बात करके चंद्रयान 2 मिशन में सामने आने वाली चुनौतियों को समझने की कोशिश की।
देखिए, भारत का जो चंद्रयान 2 है वो धरती की कक्षा छोड़ के चांद की तरफ रवाना हो गया था और 384,000 किलोमीटर की दूरी पार करके कल सवेरे वो चांद की कक्षा के पास पहुंचेगा। ये चंद्रयान 2 के लिए बड़ा ट्रिकी ऑपरेशन है। अगर चंद्रयान 2 की रफ्तार जो है वो कम होती है तो चांद का जो ग्रेविटी है उसको खींच देगी और वो चांद के जाके टकरा जाएगा। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो वो चांद के पास पहुंच के चांद की कक्षा में नहीं जा पाएगा और वो एक फ्लाई बाय मिशन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चंद्रयान 2 के लिए कल का जो दिन है वो बड़ा अहम है। अगर चंद्रयान 2 कल के ऑपरेशन में सफल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो मिशन फेल हो जाएगा। तो कल का जो ऑपरेशन है चंद्रयान 2 के लिए वो बड़ा अहम है। भारत ने ये वाला ऑपरेशन जिसको लूनर कैप्चर बोलते हैं पहले एक बार ही किया है 2008 में जब चंद्रयान 1 को छोड़ा गया था और चांद पे पहुंचा था। वो भारत का पहला चांद की ओर रुख करने वाला सैटेलाइट था और वो ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 जो है वो 3-in-1 मिशन है। उसमें एक ऑर्बिटर है, एक विक्रम नाम का लैंडर है और एक प्रज्ञान नाम का रोवर है। लेकिन अगर लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर को सफलता से अपना काम करना है तो जो कल सवेरे का ऑपरेशन है वो इसरो को बड़े सफाई से इसे पूरा करना पड़ेगा।
इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? अब जो है चंद्रयान 2 आगे किस तरफ बढ़ेगा?
चंद्रयान 2 अगर लूनर कैप्चर हो जाता है तो उसके आगे उसको कई बारी चांद की कक्षा में रखा जाएगा, उसमें रॉकेट फायर किए जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके उसकी ऑर्बिट जो है 100 किलोमीटर की करी जाएगी, धीमे करके उसकी ऑर्बिट जो है 30 किलोमीटर की करी जाएगी, उसके बाद विक्रम लैंडर को उससे हटा के नीचे छोड़ा जाएगा।
जी, दुनिया ने पहले भी ऐसे मिशन जो है उसको अंजाम दिया है, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? अभी तक जितने भी मिशन हुए हैं उनमें क्या क्या चुनौतियां आई हैं और क्या असफल होने का भी कोई चांस होता है?
देखिए, इसमें असफल होने का बहुत गुंजाइश होती है क्योंकि ज्यादातर मिशन जो है इस स्टेज पे आके अक्सर फेल हुए हैं। तो ये जो मिशन है ऐसा नहीं है कि ये कोई आसान काम है, इस वक्त ये बड़ा मुश्किल काम है और देखिए कल किस तरह से अंजाम देता है।
अंग्रेजी भाषा के शायद सबसे बड़े नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल, यानी संगीत रूह की गजा होती है। आप शेक्सपियर की बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन अगर आप हिंदी फिल्म कभी कभी, बाजार, उमराव जान और रजिया सुल्तान के संगीत को सुने तो आपको यकीनन इस बात के सबूत मिल जाएंगे कि संगीत आपकी आत्मा के, आपके सोल का फूड होता है, यानी संगीत जो है वो आपके रूह की गिज़ा होती है। लेकिन संगीत को रूह की गिज़ा बनाने वाले में जिन लोगों का नाम लिया जाता है उनमें एक सबसे बड़ा नाम खय्याम अब नहीं रहे। कल मुंबई के एक अस्पताल में रात करीब 9:30 उन्होंने आखिरी सांस ली। बीबीसी हिंदी के खजाने से बीबीसी के एक पहले के कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओ के सीरीज से खय्याम की ये विशेष प्रस्तुति आपके लिए हम लेकर आए हैं। सुनिए यतीन्द्र मिश्र की ये पेशकश।
इतने मशहूर गीत को सुनते हुए ये बात अपने आप समझ में आ गई होगी कि आज हम खय्याम साहब की बात कर रहे हैं।
शामे गम की कसम, आज गमगी हैं हम, आ भी जा मेरे सनम।
खय्याम हर लिहाज से एक स्वतंत्र, विचारवान और स्वयं को संबोधित ऐसे आत्म केंद्रित संगीतकार रहे हैं जिनकी शैली के अनूठेपन ने ही उनको सबसे अलग किस्म का कलाकार बनाया है। वे जब दर्द भरे गीतों की नुमाइंदगी में शामिल हों या जब वे बिल्कुल उत्सव का माहौल रच रहे हों, दोनों ही जगहों पर आप उन्हें अपने समकालीनों से थोड़ी दूरी बरतते हुए देख सकते हैं।
अपनी परेशानी
आमने कई परतों वाले संघर्ष करते हुए लाहौर के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक गुलाम अहमद चिश्ती और हुसलाल भगतराम के हुसलाल से संगीत सीखा था। इन दो गुरुओं से पाई हुई तालीम ने खयाम को कुछ नए प्रयोगों के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते आज हमें ऐसा सुंदर संगीतकार हासिल हुआ।
फिर ना कीजे मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको,
दिखाई दिए यूं के बेखुद किया
की मकबूलियत को तफसील से रेशा रेशा बयां करने के लिए जिन दो फिल्मों का नाम लेना चाहिए उनमें उमराव जान और रजिया सुल्तान के नाम लिए जा सकते हैं। एक ऐसी प्रतिष्ठा का मामला जहां उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज का संगीत दिया, एक ऐसी रवायत को नए सिरे से सिरजा जो उसके बहुत पहले गुलाम मोहम्मद ने पाकीज़ा में करके दिखाया था। हम उमराव जान की चर्चा कर रहे हैं और उमराव जान के लिए जिस तरह उन्होंने पार्श्व गायिका आशा भोसले की आवाज़ को उनके निश्चित स्वरमान से थोड़ा नीचे उतार कर एक नीचे पिच पर ले जा करके गवाया और रिकॉर्ड किया, वो असाधारण है। पत्नी जगजीत कौर की चर्चा के बगैर खयाम का काम अधूरा ही माना जाएगा। उन्होंने ढेरों फिल्मों में उनके लिए बेहद सुंदर गाने गाए। खयाम साहब की रेशमी मुलायम जमीन से विदा लेते हुए जो कुल्लू की वादियों से उठकर अवध की महफिलों तक जाती है और दूसरी ओर मुगल बादशाहों के दरबारों तक उनका नज़ारा देखने को मिलता है, ऐसे में एक गीत को सुनाने के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूँगा जो खयाम साहब के उस व्यापक रेंज को दर्शाती है जो उन्होंने अलग लीग पर चलकर हासिल किया। ये गीत जब बना है तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस दौरान कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और भप्पी लाहड़ी जैसे संगीत निर्देशक न सिर्फ सक्रिय थे बल्कि शीर्ष पर उपस्थित थे, मगर उनके बीच किस तरह खयाम अपनी लोकप्रियता चुरा ले जाते हैं या मकबूलियत हासिल करते हैं वो इस धुन के साथ समझ में आती है। आप इसे सुने और खयाम साहब की इस महान यात्रा को सलाम करें।
जुस्तजू क्या है ए दिले नादा, ए दिले नादा।
फिल्म उमरावजान की एक गजल का एक शेर है, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या कि खुद से शर्मसार है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि खयाम साहब ने सिर्फ उमराव जान की फिल्म में संगीत देकर अपने उम्र का तमाम उम्र का हिसाब दे दिया। दोस्तों नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।